समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
Namaskar, Sir Firozi. Indeed, a very tragic incident has happened today. So, naturally, our Parikrama also will throw a lot of light and get more information from our correspondents who are there. और सेंटर भी बहुत सी डायरेक्शंस दे रहा है
जी,
you know?
बिल्कुल, और कई तरह की टीमें गठित की गई हैं जो पीड़ित हैं उन्हें जल्द से जल्द सहायता दी जाए। तो और बहुत ही दुखद हादसा है।
वेरी वेरी ट्रैजिक इंडीड। एंड ऑफ कोर्स वील हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन द शो टुडे। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स वी गो टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। A London-bound Air India plane with 242 passengers on board crashes in the Meghani Nagar area near Ahmedabad Airport in Gujarat.
गांधीनगर से 90 कर्मियों वाली तीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी गई।
Prime Minister Narendra Modi speaks to Home Minister Amit Shah and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu over the plane crash, promises all possible assistance.
एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर दुख जताया, कहा परिवारों के लिए सहायता दल गठित।
एन आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर हीट वेव्स इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड पंजाब, आल्सो प्रेडिक्ट्स हैवी रेनफॉल इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका टुडे। And yes, in our Dateline India segment, of course, we are going to talk in detail about the plane crash in Ahmedabad. There's another topic also, uske baad mein baat karenge. But first, of course, the tragic incident that unfolded earlier today in the Meghani Nagar area of Ahmedabad, where a passenger plane has crashed under still unknown circumstances. Emergency services were immediately activated with fire and police teams rushing to the scene soon after the alert was received. All roads leading to the crash site have been sealed off to facilitate rescue and relief operations, ensuring quick response from emergency personnel and unhindered evacuation of the injured.
दुर्घटना के पीड़ितों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के कारण पता लगाने के लिए आधिकारिक जांच चल रही है। लोगों से प्रतिबंधित क्षेत्र से दूर रहने और बचाव दल को बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने देने की अपील की गई है। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने अहमदाबाद संवाददाता अपर्णा खूट के पास। अपर्णा, विमान दुर्घटना के बारे में आपके पास नवीनतम क्या जानकारी है?
जी, ये दुर्घटना जो है, जैसे आप जानते हैं कि सिविल अस्पताल अहमदाबाद के नजदीक मेघानी नगर के पास हुई है
जी।
तो विमान गिरने के बाद आजू बाजू की बिल्डिंग और पार्क की गई गाड़ियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु की जो है आशंका है। और अब तक जो है बचाव कार्य बहुत ही जोरों से चल रहा है
जी।
भारतीय सेना, इंडियन आर्मी है, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं जो इस कार्य में जुड़ी हुई है और जो शव को है बाहर निकाला जा रहा है, जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस दुर्घटना के मद्देनजर अहमदाबाद एयरपोर्ट आज रात 12 बजे तक बंद घोषित कर दिया है और अहमदाबाद जो जाने वाले विमान के जो शव है वो इतने जल गए हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो गया है। घटनास्थल पर बचाव अभियान जो है जोरों से चल रहा है और जिस समय ये विमान दुर्घटना हुई और विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा उसमें सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेज भी था, तो जब घटना हुई उस समय डॉक्टर भी वहां मौजूद थे, तो इस दुर्घटना में उनकी भी मौत की आशंका है। और बचाव कार्य में अभी एनडीआरएफ और बीएसएफ भी जुड़ गई है। अहमदाबाद शहर की सभी अग्निशमन दल की गाड़ियां जो है आज इस घटनास्थल पर मौजूद है। मुख्यमंत्री कार्यालय का राज्य आपातकालीन केंद्र भी चालू है और बचाव और राहत कार्यों की लाइव निगरानी वहां पे की जा रही है
जी।
और विभिन्न एजेंसी और विभागों के साथ भी समन्वय में ये कार्य चल रहा है। राज्य सरकार के जो सीनियर कैबिनेट मंत्री है मोरू भाई बेरा, उन्होंने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक भी शुरू की है। इस दुर्घटना के संबंध में राज्य सरकार ने अपने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्र में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है
जी। तो ये दुर्घटना
चलते बहुत ही बड़े पैमाने में नुकसान की आशंका है अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में हमारे पास आधिकारिक जो है अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट बचाव कार्य जो है जोरों से चल रहा है।
जी धन्यवाद अपर्णा इस जानकारी के लिए।
And Sir Ferozi, today's tragic event has again served as a sobering reminder of the importance of aviation safety regulations, which are designed to prevent such disasters. Passenger aircraft undergo rigorous maintenance checks and pilots are trained under strict guidelines regulated by Directorate General of Civil Aviation in India and by international bodies like the International Civil Aviation Organization. Standard safety measures बहुत सारे होते हैं, आप भी बता सकती हैं क्या क्या होते हैं।
जी बिल्कुल सायरा, सबसे पहले जो चीज होती है उड़ान पूर्व निरीक्षण किया जाता है, जो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है उसमें कई तरह की चेकलिस्ट पूरी करनी होती है, इनमें कई तरह की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं और विमान के जो विभिन्न घटक होते हैं, उपकरण होते हैं, चाहे वो उसके इंजन हो, विंग्स हो, कंट्रोलर हो, उन सभी को चेक किया जाता है कि सभी चीजें भरपूर रूप से काम कर रही हो। इसके अलावा फ्लाइट के दौरान मौसम की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है कि मौसम जो है वो फ्लाइट के दौरान अनुकूल है या नहीं है। एटीसी से लगातार संपर्क किया जाता है, एटीसी को तमाम विमान की जानकारी दी जाती है, फ्लाइट की जानकारी दी जाती है।
And the, of course, the health of the pilots and all the cabin crew is also taken into account. But unfortunately, despite all such protocols, such disasters and tragic incidents, they happen, which is very, very tragic. And while air travel remains statistically one of the safest modes of transportation, continuous monitoring and upgrades to safety protocols are essential to maintain and improve safety standards. We have with us our Delhi correspondent Bhupinder Singh also. Bhupinder, what is the latest that you have for us on this tragic crash?
There were 242 people on board the aircraft consisting of two pilots and 10 cabin crew. Of these, 169 are Indian nationals, 53 are British nationals, one Canadian national, and 7 Portuguese nationals. The aircraft was under the command of Captain Sumit Sabarwal with First Officer Clive Kunder. As per the air traffic control, aircraft departed from Ahmedabad at 1:39 p.m. Aircraft immediately after departure from runway 23 fell on ground outside the airport perimeter. Air India has set up a dedicated passenger hotline number 1-800-569-1444 to provide more information. And besides, an operational control room has been activated at the Ministry of Civil Aviation to coordinate all details at contact number 011-2461-0843 and 96503-91859. And Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the tragic incident. He termed this tragedy heartbreaking beyond words. He's in touch with ministers and authorities who are working to assist those affected. The Prime Minister spoke to Home Minister Amit Shah and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu over Air India flight crash in Ahmedabad. He took stock of the situation and asked them to go to Ahmedabad. He also directed them to ensure that all possible assistance is extended immediately to those affected in the wake of the air mishap. Meanwhile, Union Home Minister Amit Shah has spoken to the Gujarat Chief Minister, Home Minister and the Police Commissioner regarding the plane crash. He also assured to provide central government assistance. And Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu has expressed shock at the flight crash in Ahmedabad. He said that the ministry is on the highest alert and he is personally monitoring the situation. Back to you.
Right. Thank you so much, Upinder, for that update. And we'll continue to monitor all the updates in our bulletins as well.
जी बिल्कुल सारा, और हम भी इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद है कि जो भी घटना के सर्वाइवर हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।
Absolutely. Moving on in our Dateline India segment, we have another topic for you listeners. We are going to throw some light on an issue that affects millions of children across the globe. Child labor. Yes, child labor refers to the exploitation of children or engaging them in manual or physical labor in any form of work that deprives them of their childhood, education, and potential. According to the International Labor Organization, Over 160 million children around the world are involved in child labor. That's one in every 10 children.
बिल्कुल सायरा, बाल श्रम एक गंभीर समस्या है और आज का दिन इसे समाप्त करने के लिए जरूरी प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है. हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सरकारों, सिविल सोसाइटी, श्रमिक संगठनों और दुनिया भर के लोगों को साथ लाता है और बाल श्रमिकों की मदद के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं इस विषय पर प्रकाश डालता है. ये दिन बाल श्रम से मुक्त दुनिया बनाने के लिए एक अहम कदम के रूप में काम करता है, जहां दुनिया भर के बच्चों को उनकी शिक्षा और विकास की कीमत पर काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए. सायरा, हम देखते हैं कि दुनिया भर में बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं उन्हें खेतों में, कारखानों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, यहां तक कि खदानों जैसे खतरनाक वातावरण में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है. और इनके अगर कारणों की बात की जाए तो गरीबी, शिक्षा की कमी और कमजोर कानून के कारण बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई छोड़कर इस तरह का बाल श्रम करने पर मजबूर हो जाते हैं.
यस, वेरी वेरी ट्रैजिक इंडीड. And it's a travesty, Sarfirozi, that even in our country where so many steps are being taken, no doubt, lekin abhi bhi bahut kuch karna baki hai, because in so-called educated families, I observe that people always have this child helper in their home. Aur bahut hi fakhr se kehte hain ki are iske to parents isko kabhi padhate na, hum log to ise padhate bhi hain.
Ji, bilkul. Ya jaise ki wo ehsaan kare ki hum aap hamare liye kaam kar rahe hain, hum aapko padha rahe hain.
Right, right. To agar aapko kisi usko padhana hi tha, to aap sirf padhate hai use
na. पढ़ना लिखना उसका अधिकार है.
एब्सोल्युटली. अब लव फॉर एग्जांपल, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन क्या उनसे उसके बदले काम करवाते हैं? इफ वी डोंट डू दैट टू आवर चिल्ड्रन, देन व्हाई डू वी डू दिस टू अदर चिल्ड्रन हु डिजर्व एन इक्वल, यू कैन से इक्वल ब्राइट चाइल्डहुड.
जी बिल्कुल.
And well, child labor is not just about poor families needing extra income. It's about broken systems, no access to school, no protection from the government and lack of awareness. When we protect children's rights, we build a stronger future for everyone.
जी बिल्कुल सायरा, और अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो बाल श्रम को रोका जा सकता है. इसके लिए कई तरह के उपाय हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करना और माता पिता को खासतौर पर जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ही ये अंदर तक मौजूद है कि बच्चों को बहुत ज्यादा शिक्षा ना देना उसके बदले में गरीबी इसका कारण है कि कई बार जो माता पिता है वो बच्चे को पढ़ाई से हटाकर काम पर भेज देते हैं अक्सर, कि ठीक है ये भी दो पैसे कमाकर लाएगा हमारे लिए.
That's true. So here's giving a message to all our listeners that if you spot any child around you who deserves a brighter childhood, of course every one of them does, then please, please report it to the concerned authorities and agencies जो उनको rescue करें और उस श्रम में उनको ना लगाएं.
अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है.
Yes, the Press Information Bureau of PIB of Gangtok organized a Vartalaap program recently at Pakyong District on the theme 11 years of Modi government. Let's hear more from our correspondent.
The program was graced by Jilla Adhyaksha of Pakim District, Ladin Lamu Bhutia, as the chief guest. In her address, Bhutia remarked that such interactions serve as an effective bridge between the Government of India, Government of Sikkim and the media. She highlighted key scheme launched by the Government of Sikkim and their positive impact on rural livelihood. The event featured two panel discussions, the first titled Collective Efforts Leading to a Bikashit Bharat by 2047 and the Role of Sikkim. Included Sanghi Gacho Bhutia, Additional District Collector Pakyong, Dr. Anjala Pradhan, Additional Director, Animal Husbandry and Veterinary Services, and Gauri Mukhya, Assistant Director, Department of Fisheries. Sanghi Gacho Bhutia emphasized the critical role of state administration in building Bikashit Bharat, underscoring the relevance of GST and RTI in promoting transparent governance. He stressed that both central and state government must prioritize a people-centric approach.
As earlier, like maybe 30-40 years back, the government used to function in a different way. But now the guiding principle of the government has totally changed. So government is evolving as per the need of the time. Looking at these examples, set up initiatives taken by the government and the government of Sikkim along with the government of India schemes.
उत्तराखंड में आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को अब राज्य सरकार से तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला और बाल बहुमुखी सहायता निधि की नियमावली को मंजूरी दी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रही हैं देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी सिंह।
इस योजना का उद्देश्य आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाना है। इस सहायता से जरूरतमंदों को रहने, खाने, इलाज, पढ़ाई और रोजगार जैसे कार्यों में मदद दी जाएगी। जिनकी आमदनी का जरिया प्रभावित हुआ है उन्हें भी लाभ मिलेगा। योजना के लिए धनराशि अंग्रेजी शराब की बिक्री पर सेस लगाकर जुटाई जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि इस योजना की महत्वपूर्ण बात इसकी तत्काल मदद व्यवस्था है। पात्र व्यक्ति के आवेदन पर ब्लॉक स्तर की टीम 5,000 रुपए तक की सहायता तुरंत दे सकेगी। 10,000 से 25,000 रुपए की मदद जिला समिति 15 दिन में स्वीकृत करेगी। जरूरत अधिक होने पर राज्य स्तरीय समिति 5,00,000 रुपए तक की सहायता दे सकेगी। योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन, दवा से जुड़ी किट, अस्पताल पहुंचने की सुविधा, रहने खाने की व्यवस्था और मेधावी छात्राओं को पढ़ाई में मदद मिलेगी। मनरेगा या निर्माण स्थलों पर काम करने वाले महिलाओं और उनके बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
And now in our parikrama, we go down south to Chennai. Greater Chennai Corporation has opened an air-conditioned mobile lounge for the first time in the state, exclusively for gig workers at Annanagar. Not only in Chennai, but also all over the country, online food delivery and other products are increasing. One could see the workers in different colored uniforms delivering the necessary goods on two-wheelers, whizzing past many places. As a measure to provide temporary relief, the Chennai Corporation has set up separate lounges for them. Very interesting indeed, isn't it, Safrozi? Let's hear more from our correspondent.
The lounge will offer workers a comfortable on-the-go dining space that can accommodate up to 25 people at a time. The civic body has identified 10 locations to set up similar lounges for gig workers. The gig economy is growing significantly in Chennai, offering flexible work opportunities in various sectors such as food delivery and ride hailing. While it provides income and flexibility, gig workers face challenges including unsafe and uncomfortable working conditions. These conditions worsen during monsoon and summer. As workers are often forced to wait along roadsides, the rest areas with the lounge in Annanagar, covering an area of 200 square feet for gig workers, was built at a cost of ₹25 lakh. The corporation has also installed a water dispenser. To use the lounge, food delivery workers must register the details, but there are no time restrictions. The Civic Corporation has also planned to set up 10 such lounges in various parts of the city soon. Joy, Akashwani, reporting for Parikrama from Chennai.
Viksit Krishi Sankalp Abhiyan takes agri-scientists to the doorsteps of the farmers. The nationwide massive free Kharif campaign, Viksit Krishi Sankalp Abhiyan, has taken agri-scientists to the doorstep of the farmers. The campaign has helped farmers to interact with the scientists to have first-hand information on agriculture activities. In Karnataka too, 70 interdisciplinary teams of scientists interacted with farmers on a daily basis, recording the feedback from the farmers. Let's hear more from our correspondent from Bengaluru.
Viksit Krishi Sankalp Abhiyan has made perceptible impact in rural areas in Karnataka. The scientists have received valuable feedback from the farmers on the challenges faced by them, and on the other side, the farmers had an opportunity to improve their skills with scientific knowledge provided to them by the agriculture scientists. As part of the Abhiyan, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan too had visited the Indian Institute of Horticulture Research near Bengaluru and interacted with the farmers. He had assured the farmers to introduce a stricter law to address the menace of spurious pesticides, seeds and fertilizers. He also had promised to introduce a scheme to reduce farmers' transportation costs. He said, "One nation, one agriculture, one team is the vision of the Abhiyan." A retired senior agriculture scientist of Indian Institute of Horticulture Research, B. Narayanaswamy, has spoken to Akashwani News on the outcome of the Abhiyan.
Vikasit Krishi Sankalpa Abhiyan 2025 is a nationwide campaign launched to modernize Indian agriculture. It is a definitely an integrated extension approach introduced by Government of India by involving all state departments, the two agriculture departments, agriculture universities, all ICR institutions, more than 731 Krishi Vignana Kendras, to cover more than 1.31 crore farming community in the stipulated period on technological interventions. Here, crop diversification, marketing orientation, linkages, and also all horticulture crops expansion, drone Didi program, PM Asha, price support schemes, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, all other developmental programs have created an awareness among farming community. This type of the programs are definitely paves the way for Indian agriculture to guide future policies and also reforms in the sector.
As Union Agriculture Minister had said, India can act as world's food basket if our farmers receive timely inputs on scientific farming techniques. The Abhiyan is a step in that direction. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और लेते हैं वहां की हलचल.
Yes, in the FIH Hockey Pro League, Indian men's team will take on Argentina at the Wagner Hockey Stadium in Amstelveen, the Netherlands, this evening. The match will begin at 6:30 p.m. Indian time. India is currently fourth in the points tally, having accumulated 15 points from 11 games. Earlier, both the teams faced each other in a close clash, where India went down narrowly with the scores 3-4 after a spirited display in Amstelveen yesterday. And now some business news. The benchmark domestic equity indices today ended with losses of 1%, weighed down by sell-off across most sectors and weak global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 823 points to close at 81,692. National Stock Exchange, Nifty 50, snapped 6-day gaining streak amid the weekly expiry of its FNO contracts. It dropped 253 points to settle at 24,888.
परिक्रमा में अब याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस.
We remember revolutionary freedom fighter Hemchandra Kanungo Das, who was born on the 12th of June 1871 in Midnapore district, West Bengal. He was the principal co-accused with Sri Aurobindo in the Alipur bomb case in 1908.
He was also one of the creators of the Calcutta flag, based on which the first flag of independent India was raised by Bhikai Jikama on the 22nd of August 1907 at the International Socialist Conference in Stuttgart, Germany.
A close associate of Barindra Kumar Ghosh and Aurobindo Ghosh, Hemchandra Kanungo was instrumental in setting up a secret bomb factory. Kanungo went to Paris to learn the art of bomb making from Russian emigre in Paris. To get money for the trip, he sold his house in Calcutta.
He reached Marseille towards the end of 1906 and spent a few months trying to get in contact with revolutionaries in Switzerland, France and England. Finally, Hemchandra found a backer to support him while he studied chemistry in Paris.
He returned to India in 1908 with a trunk full of up-to-date technical literature, the most important item of which was a 70-page manual on bomb-making, translated from Russian. He started teaching the art of bomb-making to other freedom fighters.
He opened a secret bomb factory at Maniktala near Kolkata, founder members of which were Hemchandra Kanungo, Aurobindo Ghosh and his brother Barindra Kumar Ghosh.
A suicide squad of two members was sent to kill the British officer Kingsford at Muzaffarpur. However, after bombing a wrong target, freedom fighter Prafulla Chaki committed suicide before the British Indian police could detain him alive. But freedom fighter Khudiram Bose was arrested.
As a result of this incident, the covert bomb factory established by Hemchandra Kanungo was raided by the British police and shut down. Almost all the members were arrested in a short period of time. For his involvement in the Alipur bomb case, Hemchandra was sentenced to transportation for life in the Andamans, but was released in 1921.
In 1926, his book account of the revolutionary movement in Bengal was published. In this book, Hemchandra presented an analysis of the history of the armed political revolution in Bengal. The great revolutionary died on the 8th of April, 1951.
We also remember revolutionary freedom fighter Apoorv Sen, who was martyred on the 12th of June, 1932. A clerk at the General Post Office of Chittagong, Apoorv Sen was known as Bhola in revolutionary circles. After the Chittagong Armory raid, the police were in search for the absconders.
On the information provided by an informant, Captain Cameroon raided the house of Savitri Chakraborty of Patia, where Apoorv Sen was killed in the crossfire on the 12th of June, 1932.
On the 12th of June, 1857, three independence activists, Salamat Ali, Amanat Ali and Sheikh Haro, launched an attack with their swords on Commandant Major McDonald's bungalow, where he was having tea with Sir Norman Leslie and Assistant Surgeon Dr. Grant.
Leslie was killed at once and the other two officers were wounded. The three activists were hanged on the 12th of June, 1857. We salute the great martyrs.
आज पुण्यतिथि है सी नारायण रेड्डी जी की. ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे. इन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है. ये 5 दशकों से भी अधिक समय तक काव्य रचना में लगे रहे. अब तक इनकी 40 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य नाट्य, निबंध, यात्रा, संस्मरण और गजल सम्मिलित हैं. सी नारायण रेड्डी ने फिल्मी जगत में भी काफी नाम कमाया. साल 1962 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए गीत लिखना शुरू किया. गीतकार के तौर पर इनकी पहली फिल्म थी गुलेब कावली कथा. इस फिल्म के साथ ही ये बेहद मशहूर हो गए. आज ही पुण्यतिथि है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे जी की. ये लोकप्रिय मराठी लेखक, नाट्यकार, हास्यकार, अभिनेता, पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और गायक थे. ये दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही जुड़े रहे. पीएल देश पांडे को पुल देश पांडे के नाम से भी जाना जाता है. इन्हें 1966 में पद्मश्री और 1990 में पद्मभूषण सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, महाराष्ट्र भूषण सम्मान, कालिदास सम्मान आदि से नवाजा गया.
Sir Firozi, before I talk about the next personality, I'm sure you would have heard from many psychologists and many people who say that journaling your day throughout, that helps you keeping calm.
जी बिल्कुल सायरा, और मैं खुद बताना चाहूंगी पिछले करीबन 10 सालों से मैं खुद journaling कर रही हूँ और ये बात बिल्कुल सच है कि journaling आपको अंदर से शांत करती है.
बिल्कुल शांत भी करती है और कई बार बहुत कहते नहीं है, it puts into perspective a lot of things.
जी बिल्कुल.
So the personality that I'm going to talk about was a young girl who journaled her very tragic days when she was a captive during the German occupation. Mm-hmm. You can say we're talking about Anne Frank. She of course gained worldwide fame posthumously for keeping a diary that documented her life in hiding during the German occupation of the Netherlands. In the diary, she regularly described her family's everyday life in the hiding place in an Amsterdam attic from the year 1942 until their arrest in 1944. So we can imagine, मतलब कई बार हम लोग को पता भी नहीं होता है कि जो हमारे journals हैं, you never know, they will become a lot of material, source materials to know the present times, isn't it? और उस जमाने में तो ऑफ कोर्स जो चल रहा था, जो political हालात थे, मेरे ख्याल से Anne Frank ने जो pen down किया, it was indeed very insightful. And Anne Frank was born in Germany in the year 1929. In 1934, when she was 4 and a half, Frank and her family moved to Amsterdam in the Netherlands after Hitler and the Nazi Party gained control over Germany. By May 1940, the family was trapped in Amsterdam by the German occupation of the Netherlands. Anne Frank lost her German citizenship in 1941 and she became stateless. Despite spending most of her life in the Netherlands and being a de facto Dutch national, she never officially became a Dutch citizen. As persecutions of the Jewish people increased in July 1942, the family went into hiding in rooms that were concealed behind a bookcase in the building where Frank's father, Otto Frank, worked. The family was arrested 2 years later by the secret police of the Nazi Party on 4th August 1944. Following their arrest, the Franks were transported to concentration camps, and on 1st November 1944, Anne Frank and her sister Margot, they were transferred from the Auschwitz concentration camp to the Belsen concentration camp, where they died, presumably of typhoid, a few months later.
आज ही पुण्यतिथि है संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज जी की. इनकी संस्कृत और अंग्रेजी के प्रति रुचि आरंभ से ही रही. जयपुर के प्रवास काल में इन्होंने वहां के समृद्ध पुस्तकालयों का भरपूर लाभ उठाया. इन्हें पद्म विभूषण, महामहोपाध्याय और साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया. आज ही पुण्यतिथि है बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार अमेय चक्रवर्ती जी की भी.
Right, and before we wrap up this show, well, news just in that UK Prime Minister Keir Starmer has expressed grief over the Air India crash in Ahmedabad, and even INB Minister Ashwini Vaishnav has expressed his condolences over the tragic flight crash in Ahmedabad. And now, of course, ghadi ki suiyan ishara kar rahi hain that we need to wrap up the show. To isi ke saath ijazat dijiye Sarfirozi aur Saira ko. Namaskar.